ग्यारह। कालिका नगर छोड़ते ही जो देश प्रारंभ होने वाला था वह था ताम्रलिप्त। इस देश की राजनगरी का नाम था ताम्रलिप्त नगर। राजा था ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त और मल्ल, ये देश इतने छोटे थे कि उन राज्यों का घेरा हस्तिनापुर नगर के बराबर भी नहीं था। इसीलिए विरोध का भय नहीं था। इससे आगे हमारा प्रखर विरोध करने का सामर्थ्य केवल एक ही राज्य में था और वह था मगध। कालिका नगर के पतन की सूचना पाकर थर्राया हुआ ताम्रलिप्त संधि के लिए तत्काल तैयार होकर हमारे स्वागत के लिए राजनगरी के द्वार पर खड़ा था। उसने जो भेंट दी थी उसमें असंख्य मोती थे। उसका राज्य ही पूर्व समुद्र के किनारे पर था। वह सागर तट मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के प्रजाजन मोतियों का व्यवसाय करते थे। समस्त आर्यावर्त में मोतियों की पूर्ति करते थे। ताम्रलिप्त नगर छोड़कर उड्रों के राज्य की ओर मुड़ा जाए क्या, यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ। परंतु अब वह विचार छोड़कर हम मल्लों के छोटे राज्य की ओर मुड़ने को विवश थे, क्योंकि उड्र और ताम्रलिप्त के मध्य ऋक्ष पर्वतों की दुर्लभ्य पंक्ति फैली हुई थी। मल्ल देश को लक्ष्य कर चलने के अतिरिक्त अन्य मार्ग ही हमारी सेना के सामने नहीं था, और इस मार्ग से जाने के लिए हम भी उत्सुक थे, क्योंकि मल्ल देश से परे था अंग देश। राजा दुर्योधन ने जिसके अभिषिक्त राजा के रूप में वसु भैया घोषित किया था वह देश। भैया ने उस देश की राजधानी बदलकर चंपा नगरी कर दी थी, लेकिन वर्षों के दीर्घ कालखंड के बाद हम बचपन में जहाँ खेले थे, लड़े झगड़े थे, बड़े हुए थे, उस चंपा नगरी के दर्शन होने वाले थे। मल्ल पर्वत के पास से गुजरते हुए हम मल्ल देश पहुँचे। भैया हस्तिनापुर में ही रहते थे, इसीलिए उन्होंने अंग देश का राज्यभार प्रत्यक्ष देखने के लिए एक मांडलिक नियुक्त कर रखा था। वह हमारा स्वागत करने के लिए मल्ल देश में आया था। उसने भैया को सादर वंदन किया। हमारे सैनिक अंगदेश की सीमा में जाने के लिए उत्सुक हो उठे थे। वे जानते थे कि अंगराज इस देश में कम से कम 4 दिन तक तो हिलेंगे नहीं, सबको यथेष्ट विश्राम करने का अवसर मिलेगा। मांडलिक के साथ हम अंगदेश की सीमा पर आए। अंगराज कर्ण अंगदेश की सीमा पर खड़े थे। सहस्त्रों अंगदेशीय नगरजन स्वागत के लिए हाथों में विविध प्रकार के फूल लेकर इकट्ठे हुए थे। सुहागने जलपूर्ण कुंभ लेकर सामने आई। अपने देश के राजा के दर्शनों से उन्मत्त हुए शास्त्रों ने गगनभेदी जय घोष किया। अंगराज कर्ण महाराज की विजय हो। चंपा नगराधिपति वसुसेन महाराज की विजय हो। बचपन में पाषाण सिंहासन पर जो घोषणा की गई थी वह सत्य हो गई। फूल बरसाए गए। जब से हस्तिनापुर छोड़ा था तब से एक बार भी कुमकुम के पवित्र केश तिलक नहीं लगे थे, वे पुनः हमारे भाल पर लगे। आरती उतारी गई। पूर्वों के सेना ने वाद्यों के शोर और घोषणाओं के कोलाहल में अंगदेश में प्रवेश किया। मेरा मन तो उस घटना से पर की तरह हल्का हो गया। सौख्य का अतिरिक्त सहन करने के लिए भी मन में एक विशिष्ट सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। परंतु भैया सदैव की भांति शांतिपूर्वक रथ में बैठे हुए थे। दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से वे अपने नगरजनों के विशुद्ध प्रेम को स्वीकार कर रहे थे। कहीं किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं थी। उनका मुखमंडल सूर्यबिंब की तरह ही चमचमा रहा था। हमारे रथ के सिर पर जगत पिता आदित्य भी तेज का रस लोड़ते हुए उस दृश्य को अपने सभी चक्षु खोल कर यथाशक्ति देख रहे होंगे, और जय तु कर्ण यह कह रहे होंगे, मुझको ऐसा प्रतीत हुआ। संध्याकाल के लगभग हम चंपा नगरी के पास आए। 30 वर्ष बाद उस नगरी का हम प्रथम दर्शन कर रहे थे। इस नगरी में ही हम सारथियों के पर्ण कुटियाँ थी। हमारे बचपन की स्मृतियाँ इस नगर ने ही प्रेम में संभाल रखी थी। यहाँ के पर्ण कुटी ने हमारे ऊपर आश्रय का छत्र धारण किया था। हंसाते खिलाते हमें पाला पोसा था। जो सिखाना चाहिए वह सिखाया था। पंक्षियों के झुंड देखते हुए गंगा के तट पर पड़ी सीपें इकट्ठा करने के लिए रथ में जाने वाले कर्णशोण, धनुष से लता वृक्षों पर लक्ष्य भेद करने वाले कर्णशोण, अरण्य में रथ की लकड़ी लाने वाले कर्णशोण, राधा माता को एक दूसरे के अभियोग सुनाने वाले कर्णशोण, क्रीड़ांगण में राजसभा के खेल के दौरान ऋषभ का सामना करने के लिए एक ही पाषाण पर खड़े होने वाले कर्णशोण, और रथ में बैठकर हस्तिनापुर को जाते समय पुनः पुनः पीछे मुड़कर अपने भाई की ओर देखने वाला कर्ण, और रथ के पीछे रुआंसा होकर हाथ उठाए सीमा तक दौड़ने वाला शोण, सबकी सब घटनाएं वहां की लता बेलों ने और पशु पक्षियों ने भी देखी थी। और आज दिग्विजयी अंगराज कर्ण और उनका दाया हाथ शोण दोनों भरे हुए मन से उसी नगरी में प्रवेश कर रहे थे। प्रेमाभिभूत होकर नगरजन उनकी निरंतर जय जयकार कर रहे थे। सुवर्ण पुष्प बरसा रहे थे। आह, जीवन का अर्थ कितना महान उलटफेर होता है। यहाँ कर्ण जैसे बीज से महान वृक्ष लहलहाने लगते हैं, कनिष्ठिका जैसी धार से गंगा यमुना दौड़ने लगती हैं। मैं सत्य अनुभव कर रहा था या स्वप्न देख रहा था, या मैं स्वयं ही समझ नहीं पा रहा था। मन के एक कोने में बचपन की स्मृतियां और एक कोने में दिग्विजय यात्रा की स्मृतियां बराबर दोहराते हुए हम रथ में चंपा नगरी के मार्ग पर चले जा रहे थे। इन 30 वर्षों में इस नगरी का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया था। राजनगरी का महत्व प्राप्त हो जाने से भव्य भवन निर्मित हो गए थे। फिर भी भैया की आंखें घूमते हुए कुछ ढूंढ रही थी। उनके हाथ सबके प्रेम को स्वीकार कर रहे थे, परंतु आंखें किसी को खोज रही थी। वाद्यों के निनाद से चंपा नगरी पुलकित हो उठी थी। उनके नाम के जयघोष की वर्षा हो रही थी। अचानक हाथ उठाकर भैया ने मुझको रथ रोकने की आज्ञा दी। मैंने वलकाएँ खींची। नीचे उतरकर वे झटपट भीड़ में होकर भीतर घुस गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मार्ग के आसपास भवनों का जल्दी जल्दी चक्कर लगाते हुए वे पीछे स्थित मुक्त क्रीड़ांगन तक पहुँचे। वह वही क्रीड़ांगन था जहाँ बचपन में हमने राज्यसभा का खेल खेला था। उनके लिए हमने जिस पाषाण का सिंहासन बनाया था, वह पाषाण एक कोने में पूर्ववत पड़ा हुआ था। नए भवन बनाते समय किसी ने उसको उल्टा कर दिया। उसका आसन जैसा भाग धरती की ओर कर दिया था। आसपास घास उगाई थी, पाषाण पर काई जम गई थी। शोण, वह देखो, अपने वसु भैया का सबसे पहला सिंहासन। राजदंड अपने हाथ से मेरे हाथ में देकर जल्दी जल्दी उस पाषाण के पास जाकर उन्होंने उसे सीधा कर दिया। फिर मेरे हाथ से वह राजदंड लेकर, जिसने देश विदेश के राजाओं का गर्व हरण किया था, उन्होंने सहसा उसे पाषाण के ऊपर रख दिया। उनके मन में क्या था यह बता पाना कठिन था। चंपा नगराधिपति वसुसेन महाराज की, यह कहने के लिए वहाँ के बचपन के मित्र भी नहीं थे। उस आवाज़ से बौखला कर आने वाला भड़का हुआ वृषभ भी नहीं था। थी केवल स्मृतियाँ जो सत्य हो गई थी, साकार हो गई थी। क्षण भर बाद उन्होंने राजदंड उठाया, एक बार फिर उस सिंहासन पर दृष्टि जमा दी। फिर हम लौट आए, पुनः रथारूढ़ हुए। जन समुदाय राजमार्ग पर पुनः आगे बढ़ने लगा। हम बचपन में जहाँ रहते थे वे पण कुटियाएँ भैया का आदेश पाकर मांडलिक ने उनको अच्छी तरह व्यवस्थित कर रखा था। उन पण कुटियों में मांडलिक के सारथी रहते थे। पर्णकुटी के द्वार पर खड़े होकर वे हमारे दिग्विजयी सेना की ओर अभिमान से देख रहे थे, सेनापति के दर्शन कर रहे थे। जिस पर्णकुटी में हम रहते थे उसके द्वार से एक अत्यंत वृद्ध सारथी खड़ा था। मैंने स्मृति के रूप में उस पर्णकुटी को वंदन किया और गंगा तट पर बने हुए मांडलिक के भवन में जाने के लिए घोड़ों की पीठ पर प्रतिरोध उठाया। भैया ने पीछे से उसे ऊपर ही पकड़ लिया। शोण, नीचे उतरो। स्वयं नीचे कूदते हुए उन्होंने मुझे आज्ञा दी। किसी की ओर ध्यान न देते हुए वे सीधे उन पर्णकुटियों में ठीक अपने पर्णकुटी के पास आए। उनको सम्मुख देखते ही वह वृद्ध सारथी घबरा गया, अपने आप ही भीतर चला गया। उसके पीछे पीछे भीतर प्रवेश करते समय भैया का मस्तक तुरंत से टकरा गया। जैसे वे लंबे हो गए थे, वैसे ही वह द्वार थोड़े ही ऊंचा हो गया था। उन्होंने अपनी ऊंचाई उस तुरंत से नाप कर देखी, सिर झुका कर वे भीतर घुसे। मैं भी अंदर आ गया। घबराया हुआ मांडलिक पहली बार ही उस पर्णकुटी में आया। वृद्ध द्वारा बिछाए गए कंबल पर कुरुओं की 8 लाख सेना का दिग्विजयी कवच कुंडलधारी सुंदर सेनापति अंगदेश का साक्षात राजा पैर सिकुड़कर बैठा था। यह देखकर क्या कहा जाए यह मांडलिक भी न समझ पाया। महाराज, आप राजभवन चले, वह कर्तव्य बुद्धि से बोला। नहीं, मैं यहीं इसी पर्णकुटी में जी भर कर 3-4 दिन रहना चाहता हूँ। जो ये साथी खाते हैं वही अन्न खाना चाहता हूँ। गंगा तट पर जाकर अर्घ्यदान करना चाहता हूँ। तुम लोग मेरे कारण पुनः यहाँ आने का कष्ट मत करना। सैनिकों का प्रबंध अच्छी तरह करो, जाओ। भैया पर्णकुटी की घास परिछत की ओर देखते हुए बोले। जो आज्ञा, मांडलिक द्वार से बाहर जाता वसे झुका कर बोला। मैंने लज्जित होकर से झुका लिया। मैं जिस पर्णकुटी से कतरा रहा था भैया ने उसको अपना लिया था। शोण, ऊपर जाओ इस कंबल पर। उन्होंने मुझको पास बैठा लिया। इतने में मांडलिक पुनः भीतर आया। उस वृद्ध को आज्ञा देते हुए उसने कहा, ऐ तुम जरा बाहर आओ, महाराज को विश्राम करने दो। नहीं, ये बाबा भी यहीं रहेंगे, तुम जाओ, मांडलिक को कठोर स्वर में आज्ञा दी गई। मैं भैया के पैरों के उंगलियों को देखता हुआ विचार मग्न हो गया। बचपन से लेकर समस्त जीवन ही घेरा बनाकर इस पर्णकुटी में मेरे चारों ओर नाचने लगा। अपने जीवन में मैंने एक बात अच्छी की थी, एक अथाह मन वाले अद्वितीय योद्धा का सारथ्य मैंने अंगीकार किया था। 12। चंपानगरी में 4 दिन कैसे बीत गए इसका हमको पता भी नहीं चला। पर्णकुटी छोड़ते समय भैया ने मोतियों का कंठहार उतार कर वृद्ध के हाथ पर रख दिया। दूर देश में रहने वाले अपने संबंधियों को बुलवाकर यह पर्णकुटी सदैव मनुष्यों से जागृत रखना, यह सूचना उसको थी। मांडली को जो सुवर्ण कर दे रहा था उसे अस्वीकार कर उल्टे उसी को दिग्विजय की संपत्ति में से विपुल हीरे माणिक्य देकर चंपानगरी की शोभा अधिक बढ़ाने की सूचना भी दी गई। अब कब होगा इसका दर्शन, यह कौन कह सकता था और कैसे कह सकता था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से हमने चंपानगरी छोड़ी। इससे आगे का साम्राज्य था रणकुशल मगधों का। आर्यावर्त में कुरुओं के हस्तिनापुर राज्य के पश्चात सामर्थ्य की दृष्टि से मगधों का एक क्रम आता था। जरासंध के नेतृत्व में किसी समय उन्होंने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए थे। आसपास के सभी मगध राज्यों की प्रभुता स्पष्ट स्वीकार करते थे। जरासंध ने तो भोज राजाओं को पराजित कर सैकड़ों राजाओं को नरयज्ञ में बलि देने के लिए कारायज्ञ में कारागृह में बंद कर रखा था। मगधों की सशस्त्र सेना भीम का योद्धाओं का गरजता हुआ महासमुद्र ही थी। गदा, शूल, तोमर, शतग्नि, खड्ग, चाप, बाण, भाला, त्रिशूल, गज, अश्व, भुषंड सभी प्रकार के पथक कुशल लड़ाकों से भरे हुए थे। उनकी सैन्य संख्या 5 अक्षौहिणी थी, अर्थात लगभग 10 लाख योद्धाओं से हमारा सामना था। यह मगध पुरुवंशीय थे। उनकी राजनगरी थी गिरिव्रज। यह गिरिव्रज नगर वसुराजा ने गंगा के किनारे बसाया था। उसके बाद उसका पुत्र बृहद्रथ सिंहासन पर बैठा। इस बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने अपने अपार सामर्थ्य से सभी राज्यों पर मगधों का आतंक स्थापित कर अपने राज्य को विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया था। भीम के द्वारा जरासंध का वध करने के कारण गिरिव्रज नगर पर जरासंध का पुत्र सहदेव राज कर रहा था। हमारी सेना से उसकी टक्कर होनी थी। चंपा नगरी छोड़ते समय हमने वहां के जानकार सैनिकों के कुछ पथक अपने साथ लेकर अपना सामर्थ्य भी बढ़ा लिया था। हमारी सैन्य संख्या अब 10 लाख के लगभग हो गई थी। उनमें वे सैनिक भी थे जो पराजित राजाओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। टक्कर जोड़ की थी। पौष का शुक्ल पक्ष समाप्त होते ही योजन मार्ग आक्रांत करते हुए दुर्वासा ऋषि के आश्रम के समीप होकर हम गिरिव्रज नगर की सीमा पर आ पहुँचे। पहुँचते ही मगधों की रणकुशलता का चकाचौंध कर देने वाला अनुभव हमको हुआ। समस्त नगर के चारों ओर जो खाई थी वह उन्होंने लकड़ियों से किनारे तक भरकर उन लकड़ियों में आग लगा दी थी। अग्नि की ज्वालाओं के मंडल में गिरिव्रज की प्राचीन अभेद प्राचीर सिर उठाए तनकर खड़ी भयंकर दिखाई दे रही थी। चुप बैठने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही हमारे सम्मुख नहीं था। एक दो दिन तड़ तड़ जलती हुई लकड़ियाँ खाई में धधकते हुए अंगारों का रूप धारण कर नष्ट हो गई। उन अंगारों की अग्नि बुझाने की राह देखते हुए खाई के किनारे हम दो दिन तक पड़ाव डाले रहे, परंतु तीसरे दिन प्रातःकाल देखते हैं कि नए अंगारे तैयार करने के लिए लकड़ियों का नया ढेर एक रात खाई में पुनः भर दिया गया था। पुनः प्राचीर को चाटने वाले प्रचंड ज्वालाएं तैयार हो गई। इस तरह यह कितने दिन चलेगा, मगधों का पतन हो सकेगा या नहीं, यह कानाफूसी हमारे सैनिकों में होने लगी। 8 दिन खाई के बाहर पड़े पड़े सैनिक उब गए। कुछ करना अनिवार्य था। 9वां दिन उदित हुआ। खाई में से उड़ने वाले राख के कण हमारे सैनिकों की आंखों में घुसने लगे। खाई के पास उस पार प्राचीर के छिद्रों से मगध सैनिक हमारी दुर्गति बड़े चाव से देखने लगे। हमें तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हार कर सभी पथक प्रमुखों की उपसेनापति के नाते मैंने अत्यावश्यक बैठक आमंत्रित की। भैया अपने शिविर में विचार मग्न स्थिति में चुपचाप बैठे हुए थे। उनके सम्मुख जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। इसीलिए उनकी अनुपस्थिति में ही मेरे शिविर में बैठक के लिए इकट्ठे हुए पथक प्रमुख बैठे हुए थे। हमारी प्रतिष्ठाओं पर लगी हुई थी। कुछ न कुछ निर्णय लेना आवश्यक था, युद्ध था या फिर पीछे हटना। जैसे ही सभी पथक प्रमुख एकत्र हुए मैंने सबसे सुझाव मांगे कि अंगारों से भरी हुई खाई कैसे पार की जाए। सभी लोग बुद्धि पर जोर देने लगे। कोई कहता था कि हाथियों पर गंगा का पानी लाकर खाई में लोड़ दिया जाए। कोई कहता था सैनिकों के पैरों से भीगे वस्त्र लपेट दिए जाएं। एक ने तो प्रश्न किया, इस राज्य को यदि यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। सभी जन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। एक विचार सबके सामने रखा गया। सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इससे तो अच्छा है कि कुछ व्यक्ति अपने देह सीधे अंगार पर डाल दें, उनकी पीठ पर होकर शेष सहस्त्रों सैनिक खाई पार कर ले। इस विचार का कुछ लोगों ने समर्थन किया। इस उपाय से हमारे 400-500 सैनिक अवश्य काम आ जाएंगे, परंतु अन्य जन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे साथियों के अंगारों से दग्ध शरीरों के ऊपर होकर गुजरने वाले सैनिक निश्चय ही मगधों पर टूट पड़ेंगे, उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। सभी पथक प्रमुखों को वापस उनके पथक में भेजकर ऐसे बलिदान के लिए तैयार होने वाले सैनिकों की नामावली तैयार करने की आज्ञा मैंने दी। एक दो रहे सहस्त्र सैनिकों ने अपने नाम देकर कीर्ति का यह रोमांचकारी मार्ग स्वीकार किया। उनका चुनाव करने का अवसर हमारे सम्मुख आ खड़ा हुआ था। जो अधिक विशाल काय थे वे चुन लिए गए थे। ऐसा मर्म स्पर्श निर्णय किसी ने किसी युद्ध में नहीं किया होगा। चुने हुए सैनिकों का अनुशासन में खड़ा कर उनकी इस कल्पना पर स्वयं प्रसन्न होता हुआ मैं यह कहने के लिए सिर झुकाकर भैया के शिविर में प्रविष्ट हुआ। शिरस्त्राण उतार कर रख देने के कारण उनके घुंघराले सुनाने बाद स्वच्छंद बिखरे हुए थे। आंखें बंद थी। अनुकू हथेलियों में लिए हुए चिंतन कर रहे थे। अंगराज, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, खाई पार करने की योजना निश्चित हो चुकी है। मैंने उनके पास बैठकर उनको अपनी रोमांचकारी योजना बताई। नहीं छोड़, नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। वे तत्क्षण आसन से उठकर शिविर के संकुचित स्थान में ही इधर से उधर चक्कर लगाते हुए व्याकुल होकर बोले। क्षण भर शांति छा गई। उनके नकार का विरोध करने के साहस मुझमें नहीं थे। वे जो कहेंगे वही होगा। मगधों के धूर्त योजना पर मैं अपने एक भी योद्धा को इस तरह बलि नहीं होने दूंगा। यदि मरना होगा तो प्रत्येक योद्धा सम्रांगण में ही लड़ता हुआ मरेगा, उन्होंने निश्चय से कहा। फिर फिर खाई पार करने का मार्ग कौन सा है, मैंने पूछा। क्षण भर स्तब्धता रही। अपना मस्तक दोनों हथेलियों से कसकर दबाकर चक्कर लगाते लगाते वे एकदम रुक गए, केवल क्षण भर के लिए। आंखें बंद कर उनको खोलते हुए वे व्यास कर शांति से बोले, है मार्ग है। कौन सा, मैंने जल्दी से पूछा। जाओ छोड़, अपने नौका पतक की सहस्त्र नौकाओं में से आधी नौकाओं को खड़वा कर उनकी लकड़ी की फांकें अलग अलग करने का आदेश दे दो। उनको अंगारों पर बिछा कर ही आज हमारी सेना अपना एक भी योद्धा न गंवाते हुई खाई पार करेगी। उन्होंने शिरस्त्राण पहन लिया, नीली आंखें चमकने लगी, कुंडल मोहक ढंग से हिलने लगे। श्रद्धा से उनके चरणों को स्पर्श कर मैं शिविर से बाहर निकला। चुने हुए सैनिकों के पास जाकर उनसे कहा, तुम्हारा चुनाव अंगारों पर शरीर चुलाने के लिए नहीं हुआ है, वह काम नौकाओं का है। जाओ नौकाएं उखाड़ कर उनकी लकड़ी की फांके शीघ्रता से अलग करो। खाड खाड खाड, आघात पर आघात होने लगे। जिन नौकाओं के सहारे से उन्होंने अनेक नदियां पार की थी, वे उखाड़ी जाने लगी। फांकों के ढेर देखकर सभी पथक प्रमुखों की आंखें आनंद से चमकने लगी। कितनी शरीर युक्त थी, अब तक किसी के ध्यान में नहीं आ सकी थी। शिरस्त्राण पहने हुए हमारे सेनापति ने आगे बढ़कर स्वयं एक एक फांक सैनिकों के हाथ में देना प्रारंभ किया। उनको ग्रहण करते समय जो मानो अमृत लाभ हो गया हो, इस आनंद से कुछ पुरुष सैनिक जय घोष करने लगे। सेनापति अंगराज कर्ण, जय तु जय तु। हमारी समस्त सेना को खाई पार करते हुए देखते ही प्राचीर पर मगध सावधान हो गए। प्राचीर के छिद्रों से वे बाणों की वर्षा सी करने लगे। हाथी घोड़ों सहित हमारी पूरी सेना खाई पार कर नगर की प्राचीर तक जा पहुंची। मगधों की एक एक अद्भुत युद्ध योजना हमको सुन्न कर रही थी। बाणों के पुंछों में पलाश के पत्तों की थैलियां लटकाकर उनमें लाल लाल चीटियां भरकर वे उनका प्रहार हमारे हस्ती पथक पर करने लगे। उन चीटियों ने जैसे ही हमारे हाथियों कान के कोमल पर्दों में जोर से काटा, नैमिषारण्य को कुछ न गिनने वाले हमारे विशाल काय हाथी मर्माहत होकर धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। कितना कुटिल युद्ध तंत्र था उनका। शोण, सभी हाथियों के कानों में वस्त्रों के गोले भरवा दो, भैया हाथ उठाकर चिल्लाए। महावर्तों ने देह पर से उत्तरी फाड़ कर उन वस्त्रों से हाथियों के कान ढक दिए। एक समस्या समाप्त हो गई, पथक आगे बढ़ने लगे। मगधों ने प्राचीर पर से पत्थर फेंकना प्रारंभ किया, जलते हुए पूंछ वाले बाण आने लगे। फिर भी किसी की चिंता न करते हुए भैया एक प्रचंड हस्ती पथक के साथ नगर के महाद्वार से भिड़ ही गए। अरिष्टसेन, व्याघ्र वर्मा, हिरण वर्मा, इन्होंने प्राचीर को घेर लिया। अब कुछ भी हो जाए, विजय मिलकर ही रहेगी विजय। हम महाद्वार के सामने पहुंचे अवश्य, परंतु ऐसा विशाल सुदृढ़ महाद्वार के सामने देखते ही देखते हमारी आशा पर पानी फिर गया। उस बंद महाद्वार से बाहर से नुकीली लोहे की कीलें ठुकी हुई थी। कोई बहखलाया हाथी उस पर टूट पड़ता तो तुरंत ही उसका गंडस्थल उन कीलों से अटक जाता था। अपने घायल बंधु के शरीर पर टक्कर मारने के लिए दूसरा हाथी तैयार ही नहीं होता था। कीलों में अटके हुए हाथी को मुक्त करते हुए सैनिक शांत हो रहे थे। पुनः समस्या, पुनः आह्वान, मगधों का महाद्वार अजय महाद्वार। भैया क्षण भर रुके, एक हाथी के पीठ हाथ से थपथपाते हुए वे विचारमग्न हो गए और तुरंत ही अपने अंग पर से लौह त्राण उतार कर आगे बढ़कर उन्होंने एक कील पर टांग दिया। उनके पीछे पीछे सभी ने अपने अपने लौह त्राण कीलों से सटाकर टांग दिए। क्षण भर में सभी कीलें ढक गई। 10 हाथियों को भालों की नोक से जैसे ही एकदम छेदा, उन्होंने बड़ी जोर की एक टक्कर मारी। मगधों का अजय महाद्वार टूट कर धूल में गिर पड़ा। अब तक सहन शक्ति की सीमा देखकर बौखलाए हुए हमारे कुरुसैनिक अपने सेनापति की जय जयकार करते हुए लाखों लाखों की अपार संख्या में गिरिव्रज में ऐसे घुसे जैसे क्रुद्ध भुजंग बाबी में घुसते हैं। मगध साम्राज्य फिर एक साधारण राज्य रह गया। घनघोर संग्राम हुआ। जरासंध, पुत्र सहदेव, भैया से द्वैरथ, गदा, खड्ग, शूल, तोमर आदि सभी प्रकार के युद्ध करके थक गया। हमारे सामने मगध सेनापति खड़ा था। संध्याकाल तक मगधों का पूर्ण विनाश हो गया। धरती प्रेतों से पट गई। बाणों के, त्रिशूलों के, खड्गों के भग्न फल बिखर गए। ने शस्त्र सहदेव के हाथ बधे हुए थे। इसी स्थिति में व्याघ्र दत्त ने उसको अंगराज के सम्मुख उपस्थित किया। उसके पिता ने अनेक राजाओं के हाथ बांध कर उनको कारागृह में बंद कर दिया था। वह स्वयं बद्धहस्त स्थिति में सचिव के साथ कुरुओं के सेनापति के सामने खड़ा था। उसका सेनापति तो गत प्राण हो ही गया था। इतने भर में वेदी पर राजा मगधों ने इससे पहले कभी अनुभव न की होगी। उनका राजध्वज नीचे उतर गया था। बोलो सहदेव, क्या कर दोगे, हमारे शूर सेनापति ने पराजित राजा से पूछा। जो आप कहें, धूर्त सचिव ने उत्तर दिया। राजन, तुम बोलो। हीरे, मोती, सुवर्ण, पांचू, प्रवाल, धान, गाय, यह कर तुमको देना ही होगा, लेकिन कैसे दोगे जानते हो? आज्ञा अंगराज, सहदेव धीरे से बोला। उसका सिर झुका हुआ था। कारागृह में बंदी बनाए गए राजाओं का दुख वह आज अनुभव कर रहा था। जितनी नौकाएं तोड़कर तुम्हारी धधकती हुई खाई पार करनी पड़ी है, उतनी नौकाएं बनवा कर उनको भर कर यह कर हमारे उप सेनापति को अर्पित करो। मेरी ओर उंगली उठाकर आज्ञा दी गई। सिर हिलाकर स्वीकृत प्रदर्शित करते ही सहदेव के हाथ मुक्त कर दिए गए। वीर योद्धाओं के मगध देश का पतन हो गया। माघ महीना प्रारंभ हो गया था। हस्तिनापुर छोड़े 2 मास बीत गए थे। हमने सहायता के लिए 2 अंगदेशीय जो अंगदेशीय सैनिक लिए थे उनको चंपानगरी की ओर वापस भेज दिया। मगधों के पतन की शुभ सूचना लेकर गुप्त दूत हस्तिनापुर की ओर भागता चला गया। उस रात से मगधों के और हमारे कारीगर अहर्निश नौकाएं तैयार करने लगे। उनकी ठोका पीटी से जिनको नींद नहीं आती थी वे सैनिक मगधों के राज नर्तकी का विलोभनीय नृत्य मशालों के प्रकाश में देखते हुए अपने शुद्ध बुद्ध खोने लगे। 13 जिस कारागृह में जरासंध ने राजाओं को बंदी बना रखा था उसे एक बार देख नौकाओं सहित कर ग्रहण कर हमने गिरिव्रज छोड़ दिया। निरंजना नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए कीकट मंद पूर्व दशाण उत्कल आदि राज्यों को जीतते हुए ऋक्ष पर्वत के निकट से हम पुनः पूर्व सागर की ओर चल दिए। माघ महीने का शुक्ल पक्ष समाप्त हो गया था। ऋक्ष पर्वत पर कलम्ब बैनफल पांडल उद खैर असन कटक नाना शमी जलनी पुन्नाग आदि अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उनके पत्तों का संगीत पूर्व सागर का नटखट पवन हमें सुना रहा था। वह तरंडी नदी पार करते ही पुण्ड्र देश में हमारा प्रवेश हो गया। पग पग पर आर्यावर्त के प्राकृतिक सौंदर्य के विविध रूप देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। कितने प्रकार के पक्षी लताएं वृक्ष नदियां सरोवर फूल शस्य पर्वत इनसे यह देश भरा हुआ था यह कोई कभी नहीं बता पाएगा। मनुष्य के राज्यों को पराजित करते हुए हम चले जा रहे थे किंतु निसर्ग के राज्य को हम श्रद्धापूर्वक मानवंदन देते जा रहे थे। पुण्ड्र देश में प्रवेश करते ही अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उस देश का राजा पौंड्रक वासुदेव हमसे आ भिड़ा। परंतु हिरण्य वर्मा ने उसको पराजित कर दिया इसलिए हमको शस्त्र भी धारण न करना पड़ा। इसके बाद का देश था कलिंग राजा दुर्योधन के ससुर चित्रांगद का देश। इस देश पर सेना लेकर कैसे चढ़ाई करे इसे दुर्योधन की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी यह विचार कर मैंने अपने सेनापति से कहा यह कलिंग देश महारानी भानुमति का और सुप्रिय भाभी का है इसको यदि छोड़ दिया जाए तो नहीं मैं द्वारका और मथुरा इसके अतिरिक्त अन्य किसी राज्य को नहीं छोड़ सकूंगा। यह राजदंड समस्त कुरुओं का है। मेरी तुम्हारी राजा दुर्योधन की किसी की भी भावनाओं की अपेक्षा उसकी प्रतिष्ठा का मूल्य अधिक है। वहां कौन सा राजा उपस्थित है भानुमंत या उसका पिता भानुमंत महारानी भानुमति का भाई उसको संदेश भेजो कि शरण में आए। यदि वो शरण में नहीं आया तो फिर क्या उसकी वही गति होगी जो मगधों के सहदेव की हुई यह उसको लिख भेजो। अपनी आज्ञा अनुसार संदेश लेकर दूत कलिंग की राजनगरी राजपुर को चला गया। वास्तव में यह राजपुर नगर सुप्रिय भाभी के कारण भैया को प्रिय लगना चाहिए था परंतु सेनापति के अतिरिक्त अन्य किसी भी नाते का विचार करने को वो तैयार नहीं थे। संदेश लेकर गया हुआ दूत लौट कर क्या संदेश लाता है यह जानने के लिए हम मन से उसकी राह देख रहे थे। 14 दूत वापस आया। कलिंगराज भानुमंत ने हमारी बात स्वीकार कर ली थी। अपना नगर सजाकर वह महानदी के तट पर आकर हमारा स्वागत करने वाला था। भाग्य से उसको यह सुबुद्धि आ गई थी। अपनी अजय सेना के साथ हमने वाद्यों के कोलाहल में उस राजनगर में प्रवेश किया। इस नगर से राजा दुर्योधन ने महारानी भानुमति का हरण किया था। इस नगर में ही अंगराज ने जरासंध को द्वंद्व में जीवन दान दिया था। महानदी के तीर पर बसा हुआ यह नगर प्रशांत और रमणीय था। राजा भानुमंत ने सम्मुख आकर मुस्कुराते हुए हमारे झंझावाती सेनापति का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने राजरथ पर चढ़ा लिया। पूर्वों के योद्धा के रूप में नहीं दुर्योधन के सखा के रूप में नहीं सुप्रिया भाभी के पति के रूप में नहीं बल्कि दिग्विजयी कर्ण के रूप में। हमारी यात्रा का आधे से अधिक प्रवास समाप्त हो चुका था। हृदय विजय के उत्साह से आकंठ भरे हुए थे। नगर में प्रवेश करते ही भैया ने सुप्रिया भाभी के वृद्ध माता पिता से मिलकर विनयपूर्वक उनका वंदन किया। भानुमंत के आग्रह पर राजपुर में एक दिन रुकने का निश्चय किया गया। माघ मास की कृष्णा पंचमी का दिन था। संध्या समय हमारे दूत पथक का प्रमुख हस्तिनापुर से आए हुए एक अश्वसात को लेकर हमारे सामने आया। वह अश्वसात गुरुपुत्र अश्वत्थामन का पत्र लेकर आया था। मगधों के राज्य से वायुवेग से दौड़ता हुआ वह हम तक पहुंचने का निरंतर प्रयत्न कर रहा था। अतलसी वस्त्र में लिपटा हुआ पत्र उसके हाथ से लेते हुए मैंने उससे हस्तिनापुर की कुशल पूछी। वैसे हस्तिनापुर से संदेश पर संदेश आ रहे थे लेकिन यह पत्र यह पहला ही था। तत्क्षण भैया के पास जाकर वह मैंने उनके हाथ में दिया। उसको बिना खोले ही उन्होंने पूछा कहाँ से आया है। हस्तिनापुर से अश्वत्थामन का है। क्या लिखा है उन्होंने पढ़ो। उन्होंने ज्यों का त्यों फिर मेरे हाथ में दे दिया। अतलसी वस्त्र का आवरण हटाकर भुज पत्र पर लिखा हुआ वह पत्र मैं उत्सुक होकर पढ़ने लगा। मित्र तुम्हारी गगनभेदी विजय की चर्चाएं प्रति सप्ताह आकर राजभवन से टकरा रही हैं। सर्वत्र यही चर्चा है कि इस दिग्विजय से तुम कीर्ति के शिखर पर पहुंच गए हो। तुम जिसे दिग्विजय वीर को मुझ जैसा ऋषि कुमार क्या लिख सकता है, फिर भी इस पत्र को दिग्विजय कर्ण के रूप में मत पढ़ना, एक मित्र के रूप में पढ़ना। मुझे विश्वास है कि तुम इस पत्र का अवश्य स्वागत करोगे। तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मित्र के पत्र में कोई त्रुटि होने पर तुम क्रुद्ध नहीं होगे। पांचाल, कोसल, विदेह, कौशिकी, कच्छ, कामरूप, बंग, मगध आदि देश जीतते हुए तुम अश्वगति से चले आ रहे हो। क्षण भर को जब तक तुम उनके राज्य में होते हो तब तक वे तुम्हारे अधिकार को मान्य करते हैं, परंतु जैसे ही तुम आगे बढ़ जाते हो वे पुनः अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। ध्यान रखो, सबको अपनी संस्कृति प्राण प्रिय होती है और वह होनी भी चाहिए, क्योंकि वही सजीवता का लक्षण है। अस्तित्व गंवा कर जीने के लिए क्षुद्र कौवा भी तैयार नहीं होता, इसलिए सबको जीता जा सकता है केवल प्रेम से ही। यूं ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने व्यवहार से ही सबको जीत लिया होगा। धन, संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राचीरें कितने ही दृढ़ क्यों न हो, किंतु अंत में मृत्यु के महादिग्विजयी सम्राट से वे मनुष्य की रक्षा कर ही नहीं सकती। उसके लिए एक ही प्राचीर समर्थ सिद्ध होती है और वह है मन की। स्वधर्म के अनुसार इस छोटे से पत्र में भी तुमको तत्वज्ञान ही सुनाने लग गया हूँ। यह पढ़कर शायद तुम उकता जाओगे, इसीलिए तत्वज्ञान अब इतना ही रहे। समस्त सेना के साथ मार्गाक्रमण करते हुए समय इस रमणीय देश का विविध स्वरूपों में तुमने दर्शन करे होंगे। इससे तुम्हारा प्रकृति प्रेमी मन सदैव आनंदित रहता होगा। किसी कलकल करती बहती हुई नदी का दर्शन करते समय होने वाला आनंद, विविध वर्णों के पूर्ण विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर पर चक्कर काटते हुए पुष्ट भ्रमरों के गुंजन सुनते समय होने वाला आनंद, पंख पसार कर प्रफुल्ल प्रकृति को स्नेहपूर्ण आह्वान देने वाले मयूर को नित्य मग्न देखते समय होने वाला आनंद, आकाश के नीले वस्त्र को अपनी सतरंग की किनारी लगाने वाले इंद्रधनुष को देखते हुए होने वाला आनंद, ये सब आनंद मेरी दृष्टि में 10 योद्धों में मिली हुई विजय के आनंद से भी अधिक सरस है। इस दृष्टि से तुम्हारी दिग्विजय हो दोहरी सफलता है। अस्तु, अब थोड़ा सा हस्तिनापुर के संबंध है। मैं सदैव नगर के बाहर विष्णु मंदिर में देव दर्शन के लिए जाता हूँ। वहाँ पत्थरों के दरार में उस पीपल के पौधे का भी दर्शन होता है जो मैंने तुम्हें दिखाया था। इन 2 महीनों में कितनी तेजी से बड़ा है वह। यहाँ आने के बाद जब तुम उसको देखोगे तो तब तुम भी उसकी प्रशंसा ही करोगे। वह मुझको सदैव तुम्हारा स्मरण करा देता है। अस्तु, हम सब तुम्हारे आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब जनों में विशाली भाभी और तुम्हारे कुटुंबी जन भी हैं। शोण को स्नेहपूर्ण वंदन। अरे हाँ, इस पूरे पत्र में महत्वपूर्ण वृत्तांत आया ही नहीं। इधर तुम दिग्विजय के लिए निकले, उधर दूसरे ही दिन द्वारिका से राजमाता कुंती देवी नगर में आ गई। महामंत्री विदुर की पर्णकुटी में ठहरी हैं वे। मुझे तो ऐसा लगता है कि महामंत्री ने ही उनको बुलवा लिया है। उनके दर्शन भी कभी कभी हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि एक बार यूं ही मुझको विदुर की पर्णकुटी में जाने का अवसर मिला। उस समय राजमाता के रूप में उनकी वंदना करते समय उनके चरण देखकर मुझको बड़ी तीव्रता से तुम्हारी याद आई। कितनी समता है तुम्हारे और उनके संकुचित होते हुए चरणों में। ठीक है, अब पत्र समाप्त करता हूँ, क्योंकि जो कुछ कहने को बताने योग्य था वह सबका सब लिख लिया जाए तो इस भोजपत्र के विपुल पन्ने भर जाएंगे। शेष कुशल, तुम्हारा ससुरे अश्वत्थामा। अंत में उन्होंने पत्र में स्नेहबद्ध शब्द काट कर उसके स्थान पर स्वस्नेह परिवर्तन कर दिया था। बंधन की कोई भी कल्पना मन पर लाद लेना यह शायद उनके आध्यात्मिक मन को अच्छा न लगा होगा। उस पत्र ने मेरे मन को विलक्षण प्रसन्नता दी, परंतु भैया विचारमग्न और कुछ अस्वस्थ से हो गए। पत्रोत्तर क्या भेजा जाए, मैंने पूछा। नहीं, उनको कोई भी उत्तर मत भेजो। 15, राजा भानुमंत के सचिव ने कलिंग राज्य से में प्रेक्षणीय स्थलों की नामावली बताते समय महेंद्र पर्वत का भी उल्लेख किया। पर्वत और प्रेक्षणीय, यह विचार कम से कम मुझे तो विचित्र ही लगा। यह पर्वत प्रेक्षणीय होते हैं परंतु दूर से, क्योंकि उनका उल्लंघन करते समय अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसका अनुभव हम कर ही रहे थे। मैंने सचिव से पूछा, आपका यह महेंद्र हिमालय की अपेक्षा ही प्रेक्षणीय है क्या? निश्चय है। जैसे सूर्य किरणों में हिमालय के शिखर चमकते हैं, वैसे ही इस महेंद्र के शिखर पर एक परशु चमकता है। परशु कैसा? हाँ, परशु ही। जमदग्नि पुत्र परशुराम आश्रम स्थापित कर इस पर्वत पर निवास करते रहे हैं। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा की महेंद्र की चढ़ान पर धीरे धीरे उतर कर अपना वर्ण व्रत पूर्ण करने के लिए वे पूर्वी समुद्र के फेरी जल में छाती तक खड़े होकर वहाँ सूर्य को अर्घदान करते हैं। उनके दर्शनों के लिए अमावस्या और पूर्णिमा को सागर किनारे भीड़ का पार नहीं होता। स्याह काली घनी दाढ़ी में लहरों के तुषार कण संचित कर लेने वाले भगवान परशुराम बड़े ही विलोभनीय दिखाई देते हैं। भगवान परशुराम, महेंद्र पर्वत पर जाया जाए क्या? एक विचार क्षण भर को मन में झांक किया, परंतु सैन्य को छोड़कर स्वयं कैसे जाया जाए? भैया का यह प्रश्न मेरे लिए नितांत उपेक्षित था। राजपुर छोड़कर हम लोगों ने महेंद्र पर्वत का चक्कर लगाया। उस पर्वत के नीले नीले शिखर दृष्टि से ओझल होने लगे। कर्णिकार, कटक, रंजा, नंदी, धावा, धामनी, जामुन आदि विविध प्रकार के वृक्षों को आश्रय देने वाले वे हृदय उदार हृदय शिखर सिर पर तुषार का शुभ किरीट धारण कर भगवान परशु के आश्रम की शुचिता प्रकट कर रहे थे। महानदी के किनारे किनारे दक्षिण कोसलों का राज्य पार कर हम विदर्भ की सीमा पर जा पहुंचे। विदर्भ कृष्ण पत्नी रुक्मणी का देश, हस्तिनापुर की पूर्व दिशा का संपूर्ण प्रदेश समाप्त हो गया था। अब दक्षिण दिशा के दिग्विजय प्रारंभ हो गई थी। माघ समाप्त होकर फाल्गुन का महीना हो जाने के कारण दोनों तटों पर नीम, पीपल, शालमली आदि के वृक्ष सुकोमल पल्लवों से मृदुल सरसर करके यह सूचना देने लगे थे कि अब जल्दी वसंत ऋतु आएगी। वसंत के स्वागत से पहले विदर्भ राज रुक्मे को अंगराज कर्ण का स्वागत करना पड़ेगा। रुक्मे श्री कृष्ण का आप्तेष्ट था। हमारे सेनापति की तीव्र इच्छा थी कि वह संधि कर ले। इस आशा का संदेश लेकर विदर्भ की राजनगरी कुंडिनपुर को दूत भी भेजा गया, परंतु उसने संधि करने से इनकार कर दिया। वीणा और भद्रा नदी पार कर हमारी सेना विदर्भों की सीमा में घुसी। पयश्विनी नदी के तीर पर स्थित कुंडिनपुर को प्राप्त करने के लिए पवन वेग से हम मार्ग द्वारा आक्रमण कर रहे थे, परंतु बीच में ही भोजकूट नगर में रुकने की अपार सेना फैली हुई देखकर हम सबको आश्चर्य का आघात लगा। यह राजा राजनगरी छोड़कर यहाँ बीच में ही कैसे रुका हुआ है? इसका पता लगाते समय जो कुछ विदित हुआ वह तो एकदम चकित कर देने वाला था। भगनी रुक्मिणी श्री कृष्ण जैसे गोपाल को नहीं शिशुपाल को देनी चाहिए। इस बात के लिए इस हठी राजा ने अपने पिता राजा भीष्मक का स्पष्ट विरोध किया था। उस स्थिति में जब श्री कृष्ण ने कुंडिनपुर से रुक्मिणी का हरण किया था, उस समय यह घोर प्रतिज्ञा करके वह नगर से बाहर निकला कि रुक्मिणी को मुक्त कर वापस लाकर शिशुपाल को ही दूंगा, अन्यथा कुंडिनपुर में पुनः पैर भी नहीं रखूंगा। उसने रथ में रुक्मिणी को बैठाकर भागने वाले श्री कृष्ण को राज से बाहर भी न जाने दिया तथा बीच में ही रोककर उन पर प्रबल आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसको पराजित कर उसका सिर छेद करने के लिए अपना खड्ग उठाया। रुक्मिणी ने बीच में पड़कर अपने बंधु के प्राण बचाए। तब से आज तक अनेक वर्ष बीत गए, वह कुंडिनपुर में गया ही नहीं, वह भोजकूट बसाकर अकेला ही वहां रहता था। उसके निग्रही विरोध का अनुभव हमें भी करना था। श्री कृष्ण के सामने जाकर युद्ध करने वाला रुक्मी हमारे शरण में आ जाएगा यह संभव नहीं था, बल्कि कुंडिनपुर से विदर्भ की अपार जीवट सेना लेकर आए हुए उसके रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली ये चार अतिरथि कनिष्ठ बंधु भोजकूट में आकर उससे मिल गए थे। इसलिए और अधिक निश्चय से वह युद्ध प्रवृत्त होकर हमारी सेना में चक्कर काट रहा था और सेना को सावधान कर रहा था। हम आशा कर रहे थे कि मगध के बराबर विरोध करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं होगा, परंतु रुक्मी उस धारणा को मिथ्या सिद्ध करने के लिए हमारे सामने आ डटा था। मगधों की तरह घात प्रतिघात न करते हुए सीधा सम्रांगण में आया हुआ रुक्मी मुझे मगधों से श्रेष्ठ लगा। भोजकूट के निकट विशाल युद्ध भूमि पर उसके और हमारे सैनिकों की मुठभेड़ हुई, मानो दो सैन्य समुद्र ही एक दूसरे से भिड़ गए हों। विदर्भ ने ऐसा संग्राम कभी देखा न होगा। स्वयं भैया गर्जन करते हुए रुक्मी राजा से जा भिड़े। एक दूसरे से टकराने वाले बाणों से स्फुलिंग उठने लगे, मानो वे कह रहे थे कि हम विदर्भी हैं, भीष्मक राजा के पुत्र, रुक्मिणी के बंधे। हमारे पूरे दिनों दोनों में तुमुल धनुर्युद्ध हुआ, कोई किसी को पराजित नहीं कर सका। दूसरा दिन उदित हुआ, हाथ में गदा लेकर रुक्मी अपने सैन्य को सचेत करता हुआ विक्षुब्ध होकर कुरुसेना से टकराया। गदा लेकर रथ से उतरकर पदस्थ होते हुए अंगराज भी उसके सामने पहुंचे। शंखों के घोष कानों के पर्दे फाड़ने लगे। मृदंग की ध्वनि पर वे दोनों ही प्रभावशाली ढंग से मंडलाकार घूमने लगे। राधा माता की सूचना के अनुसार मैं युद्ध के अवसर पर भैया के समय पर आने का यथाशक्ति प्रयत्न किया करता था, इसलिए उनको समरांगण में चपलतापूर्वक लड़ते हुए देखकर मीनाक्षी को कंधे पर बैठा कर खिलाने वाले वसु भैया यही है क्या? यह संदेह मुझको हो रहा था। जितनी सरलता से मैं घोड़ों के पीठ पर प्रतोद उठाता था, उतने ही सहज भाव से वे हाथ में लिए हुए गदा को घूम रहे थे। बीच बीच में रुक्मी के प्रहार व्यर्थ करने के लिए ऊंची उछाल भर रहे थे। उन दोनों को क्रुद्ध आरक्त नेत्रों से एक दूसरे पर आक्रमण करते देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे दो उन्मत्त हाथी एक दूसरे से भिड़ रहे थे। वे निरंतर अविश्रांत भाव से प्रहार पर प्रहार कर रहे थे, नियमानुसार प्रभावशाली ढंग से मंडलाकार घूम रहे थे। बीच बीच में स्वेद के कारण किसी न किसी के हाथ की गदा छूट कर नीचे गिर रही थी। वह जब तक उसको उठा न लेता तब तक दूसरा व्यक्ति प्रहार न करते हुए केवल मंडलाकार घूमता ही रहता। उनके भुजदंडों के स्नायुतन कर फूल हुए थे। कपाल से श्वेत के निर्जर बह रहे थे। दूसरा दिन भी अस्त हुआ, कोई भी पराजय स्वीकार नहीं कर सका था। तीसरे दिन खड्ग युद्ध और चौथे दिन तोमर युद्ध हुआ, फिर भी रुक्मी हटा नहीं, भैया बिहार नहीं मान रहे थे। इन 4 दिनों में दोनों सेनाओं के सैकड़ों भी धराशायी हो गए थे। क्या किया जाए, युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। 5वां दिन किरणों की सेना लेकर आया। दोनों सेनाएं जैसे ही आपने सामने आकर खड़े हुई, हाथ उठाकर अंगराज ने वाद्यों की ध्वनि बंद करवाई। हमारे वाद्य बंद होते ही विदर्भों ने भी वाद्य ध्वनि बंद कर दी। रुक्मी, विदर्भ राज्य जीते बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। दोनों सेनाओं का विनाश यदि रोकना हो तो नीचे उतरो और इस कारण से सीधा द्वंद्व खेलो। खाट खाट भैया के रथ से आह्वान के बाद ताल ठोकने की जोरदार आवाज़ गूंज उठी। कर्ण, तुम विदर्भ को जीत नहीं पाओगे। आओ, किसी भी युद्ध के लिए रथ से नीचे उतरो, मैं तैयार हूँ। खाट खाट उस आह्वान का रुक्मी की ओर से उत्तर मिला। आखिर वह रुक्मिणी का भाई था। क्षण भर में रक्तवर्णी मिट्टी बिछा कर द्वंद्व का अखाड़ा तैयार किया गया। अपने अपने सेना नायकों पर दृष्टि केंद्रित कर दोनों सेनाएं ज्यों की त्यों खड़ी हो गई। तटस्थ सेनाओं के मध्य एक दूसरे के मस्तक से मस्तक भिड़ाकर वे इस प्रकार द्वंद्व युद्ध करने लगे जैसे दो पर्वतों के विद्ध क्रुद्ध शार्दुल टकरा रहे हों। विदर्भों की राजनगरी अनेक योजन दूर थी, परंतु उसकी प्रतिष्ठा उस अखाड़े की मिट्टी पर झोंके खाने लगी। वे एक दूसरे को आहत करने के लिए ऐसे गुत पड़े जैसे दो अजगर एक दूसरे को कुंडली में लपेट रहे हों। प्रथम पहर समाप्त हुआ, सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। दोनों के देह पर श्वेत पोषने के लिए बार बार राख मली गई और राख के लेप से वे दोनों विद्रूप दिखाई देने लगे। द्वितीय प्रहर समाप्त हुआ, अब रुक्मी भैया के देह का स्पर्श टालने लगा। उसके हाव-भाव से ऐसा लगने लगा जैसे अग्नि का स्पर्श हो रहा हो। इतने में भैया ने अत्यंत चपलता से हलचल की। बाहुकंटक से पहले होने वाली हलचल थी वह। बाहुकंटक प्राण घातक दाव। मैं यह विचार कर ही रहा था कि हमारे वीर सेनापति ने रुक्मी को गठरी की तरह बांध कर जांघों के बीच दबा लिया। हाथों के पास उसके गले के आसपास कसे जाने लगे। एड़ियां घिसटता हुआ वह गत प्राण होने वाले भुजंग की तरह छटपटाने लगा, असहाय दयनीय प्राणांतक। रुक्मी शरण आओ, भैया गरज उठे। दाएं हाथ का अंगूठा उठाकर रुक्मी शरण में आया, पास शिथिल हुआ, प्राणदान मिला। अंगराज कर्ण जयतु। हमारी सेना के अवरुद्ध श्वास घोषणाओं से बाहर निकलने लगे। तटस्थ सैनिक कुंडिनपुर की ओर जाने के लिए छूट पड़े हरिणों के झुंड की तरह। पराजित रुक्मी सिर झुकाकर वापस लौट जाएगा, हमारा यही अनुमान था। परंतु अंगराज का दाया हाथ पकड़कर उसको ऊंचा उठाता हुआ वह दोनों सेनाओं से बोला, अंगराज कर्ण जैसा वीर संपूर्ण आर्यावर्त में नहीं है। मैं विदर्भ राज रुक्मी उनका स्वागत करता हूँ। मुड़कर उसने हमारे सेनापति को अलिंगन में बांध लिया। वह अभूतपूर्व दृश्य देखकर उन्मत्त होकर मैंने भी घोषणा की, विदर्भराज रुक्मी की जय हो। दोनों सेनाओं ने साथ दिया। अश्वत्थामा के पत्र के कुछ विचार मेरे मन में चक्कर लगा रहे थे। प्रत्येक को अपनी संस्कृति प्रिय होती है और होनी भी चाहिए, यही जीवन का लक्षण है। सबको प्रेम से ही जीता जा सकता है। तुम्हारे दिग्विजय दुहरी यशस्वी है।